नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी है। इसराइल ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत, संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन को पूरी ताकत से जवाब देने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष विराम प्रभावी, दोनों देशों ने इसे बनाए रखने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उछाल और लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का भारत देश हित में कड़े फैसले लेता है।
दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।
श्री मोदी ने देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों के श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री नारायण गुरु के आदर्श मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। उन्होंने श्री नारायण गुरु को देश और समाज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए प्रकाश की किरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक शताब्दी पहले शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और विकसित भारत की दिशा में राष्ट्र को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रेरणा राष्ट्र को सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। इसराइल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को समाप्त करने के खतरे के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है। बयान में ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने के उनके समर्थन और भागीदारी के लिए अमेरिका को धन्यवाद भी दिया गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का इसराइल जोरदार तरीके से जवाब देगा। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है और उन्होंने दोनों देशों से इसका उल्लंघन न करने को कहा। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा ने लाखों लोगों को अस्थायी राहत दी है। कथित तौर पर युद्ध विराम स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे से प्रभावी हुआ था, जबकि ईरानी शहरों पर इसराइल के हमले इससे कुछ समय पहले ही रोके गए थे। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है। पश्चिमी एशिया में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि आज तड़के ईरान के मशहद से 292 भारतीय नागरिक विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे हैं। वायुसेना ने भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को निकालने के लिए जॉर्डन और मिस्र से भी मिशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इसराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। यह विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। राष्ट्र राजधानी पहुंचने पर सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सरकार प्राथमिकता अपने नागरिकों को निकालना है। इसराइल से 161 भारतीय नागरिकों का एक और दल भी आज नई दिल्ली पहुंचा। वे आज सुबह अम्मान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने उनका स्वागत किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मार्गरिटा ने कहा कि केंद्र सरकार ईरान और इसराइल में भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान की जा रही है। भारत श्रीलंका जैसे देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में सहायता प्रदान कर रही है। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज उछाल देखने को मिला है। हालांकि दोनों सूचकांकों ने शुरुआती कारोबार में हासिल बढ़त को कुछ हद तक कम कर दिया है। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 464 अंक बढ़कर 82,361 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक बढ़कर 25,131 पर कारोबार कर रहे थे। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों को बर्दाश्त किया था।
मेरे प्यारे देशवासियों, जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा है कि भारत लंबी छलांग लगाते हुए शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें से 4थे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि अब युवाओं के पास अभूतपूर्व अवसर मौजूद है। श्री धनखड़ ने एनडीए सरकार की लाई गई नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह विचार मंथन राष्ट्र और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है। उन्होंने आपातकाल की तुलना करते हुए लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाई। श्री धनखड़ ने कहा है कि युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 25 जून को मनाया जाने वाला संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है। मौसम विभाग ने कल से पश्चिमोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि आज मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मछुआरों को गुजरात, कोंकण, आंध्र प्रदेश, मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के तटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों पापुमपारे, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अन्य सभी जिलों के लिए साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री गाड़ियों के निर्माता को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना के अंतर्गत वैश्विक कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यह आवेदन पोर्टल इस वर्ष 21 अक्टूबर तक आवेदकों के लिए खुला रहेगा। आज नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इस पहल से देश स्वच्छ, आत्मनिर्भर और विश्व के वाहनों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। और क्रिकेट में भारत ने निर्धारित 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 4थे दिन बिना किसी नुकसान के 21 रन बनाए थे। उसे मैच जीतने के लिए 350 रन और बनाने हैं, जबकि भारत को सभी 10 विकेट लेने होंगे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 364 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी में 471 रनों के जवाब में 665 रन बनाए थे। अंतिम समाचार मिलने तक आज की पारी में इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी विकेट गंवाए 22 ओवर में 88 रन बना चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।